ओम शांति। हम लोग 3 दिन से यहाँ हैं, तो जैसे ही पांडव भवन में आना हुआ, मालूम पड़ा हमारी मीठी स्मिता दीदी हमारी इस भट्टी को बहुत सुंदर सुचारू रूप से चलाने वाली हैं, और वो हम सब देख भी रहे हैं कि आप निमित्त बनकर इस भट्टी को बहुत सुंदर आप रूप दे रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आज हमारे बीच में हमारी ईश्वरता दीदी हमारी क्लास कराएंगी, तो हम सब एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करेंगे, और हमें बहुत खुशी है कि अभी आपकी ज्ञान वीणा हमें सुनने को मिलेगी। तो हमारी ईश्वरता दीदी, आप अपने एक्यूरेसी और दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाली मीठी मुस्कान और मधुर वाणी द्वारा हम सबका मन मोहने वाली, और आपके लिए कुछ लाइन हमें भी आ रही है, शायद पता नहीं इतनी परफेक्ट हो या ना हो, कि विराट इस सृष्टि में महान है आप, विराट इस सृष्टि में महान है आप, जिन्हें खुदा ने अपने ढंग से संवारा है। विराट इस सृष्टि में महान है आप, जिन्हें खुदा ने अपने ढंग से संवारा है, अपने श्रेष्ठ कलाकृति और रंगों से खास आपको संवारा है, निहारा है, और आप बहुत सारी विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। आप अहमदाबाद नवरंगपुरा सेवा केंद्र की आप इंचार्ज हैं, और साथ साथ अहमदाबाद में जो खास सीनियर सिटीजन्स के लिए जो खुश राजी होम बना है, आप उनकी डायरेक्टर भी हैं, और अहमदाबाद में एक रेडियो स्टेशन है, रेडियो साबरमती 89.6 FM, उसकी आप स्टेशन मैनेजर भी हैं, और आप जगह जगह जाकर मैनेजमेंट की क्लासेस कराती हैं, और एक दिव्य नगरी स्लम सेवा प्रोजेक्ट अहमदाबाद में चलता है, उसकी भी आप मुख्य कार्यकारी हैं, और आप विशेष पीस ऑफ माइंड टीवी पर 114 लोकप्रिय एपिसोड आपने दिया है ट्यूनिंग विथ सेल्फ का, और आप जी टीवी गुजरात में भी आपने बहुत सुंदर प्रोग्राम अपना आप देती रहती हैं। तो पूरे ईश्वरीय परिवार को और बाबा को, यज्ञ को आप पर नाज है कि आप एक विशेष आत्मा बनकर बाबा की सेवा को इतना आगे बढ़ा रही हैं। तो अभी हम सब ईश्वरता दीदी के मुख से सुनेंगे उनके ज्ञान रतन। ओम शांति।
ओम शांति। हमारी मीठी बहन जी को भी थैंक्स। आज का जो विषय है वो है ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी एवं पर्सनालिटी। क्या है ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी एवं पर्सनालिटी? पवित्रता। और तो पर्सनालिटी क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी दोनों की बात है। जो बाबा कहता है प्रॉपर्टी संतुष्टता है और पर्सनालिटी प्रसन्नता है ना? प्रॉपर्टी संतुष्टता है और पर्सनालिटी प्रसन्नता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो उसको बताना पड़ता है कि मैं इतने करोड़ों का आसामी हूँ, मैं इतना साहूकार हूँ, कि उसके बर्तन से, उसकी पर्सनालिटी से पता चलता है। क्या कहेंगे? पर्सनालिटी बोलती है ना। और इसलिए कहा कि पर्सनालिटी का आधार प्रॉपर्टी है। संसार में लोग स्थूल प्रॉपर्टी मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की जो पर्सनालिटी है प्रसन्नता, उसका बेस क्या है? संतुष्टता रूपी प्रॉपर्टी। बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में संतुष्टता और पर्सनालिटी दोनों को मिलाकर के डिफरेंट डेफिनेशंस दी है। एक तो कहा कि प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी है, दूसरा बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की विशेषता संतुष्टता है। और कैसे पता चलेगी कि विशेषता इस आत्मा के पास है? तो निशानी है प्रसन्नता। और जो आत्मा सुबह से लेकर रात्रि तक उसका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता है, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, तो क्या होगा? कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे जो सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल प्रसन्न रहता है, ऊपर नीचे आती है लाइफ में लेकिन फिर भी प्रसन्न रहता है, तो उसका प्रत्यक्ष फल बाबा ने कहा था प्रशंसा। लोग बोले बिना रह नहीं सकेंगे कि इनका चेहरा सदैव देखो तो प्रसन्नचित है। तीसरी डेफिनेशन बाबा ने ये कही है कि संतुष्टता रूहानियत की विधि है। संतुष्टता रूहानियत की विधि है और रूहानियत की सिद्धि प्रसन्नता है। कैसे? विधि संतुष्टता है रूहानियत की। कैसे? आप देखो कोई भी आत्मा हमेशा मांगती रहती है, डिमांडिंग डिमांडिंग, चाहे स्थूल साधन है, सेल्वेशन है, कोई भी चीज है, मान है, शान है, हमेशा आपको डिमांड करती रहे, तो कोई कहेगा कि ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है? रूहानियत माना देने वाला, लेने वाला नहीं। और हम बन क्या रहे हैं? देवता, देने वाले। तो ये स्पिरिचुअलिटी को बताता है संतुष्टता। और रूहानियत की प्राप्ति है प्रसन्नता। जो भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व हो गए संसार में, चाहे हमारे बाबा या मम्मा की बात ले लो, हमारी दादियों की बात ले लो, हमारे ब्राह्मण परिवार की आत्माओं की बात ले लो, या लौकिक जगत की भी बात ले लो, लेकिन जो स्पिरिचुअल होंगे ना, उनके चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता होती है। कई लोग कहते हैं कि आपके बीके हजारों के बीच में बैठे ना, तब भी दिखाई देते हैं, अलग से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे पर प्रसन्नता है, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल। स्माइल डिफरेंट है, प्रसन्नता डिफरेंट है। कितना भी खराब मूड हो और फोटोग्राफी सेशन चल रहा हो तो क्या होगा? तुरंत स्माइल आएगी, है ना? तो स्माइल लानी पड़ती है। प्रसन्नता भीतर से आती है, है ना? क्योंकि उसका बेस संतुष्टता है। कहते हैं ना, संतोषी नर सदा सुखी, है ना? ये कहा जाता है। चौथी डिफाइन बाबा ने कहा डेफिनेशन को कि ब्राह्मणों का सर्वोच्च सुख संतुष्टता है। सर्वोच्च सुख, हाईएस्ट, और सर्वोच्च प्राप्ति प्रसन्नता है। पांचवी डेफिनेशन बाबा ने सुनाई कि सर्व प्राप्तियों का आधार, उसके बेस्ड संतुष्टता मिलती है, और संतुष्टता के बेस प्रसन्नता होती है। तो उसका ऑपोजिट करें तो अप्राप्ति असंतोष क्रिएट करती है और असंतोष अप्रसन्न कर देती है। और जो भी आत्मा अप्रसन्न होती है उसके मन में प्रश्न शुरू हो जाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे थोड़े ही, ऐसा होना चाहिए, चलता है ना? जिसको बाबा कहते हैं जिसके मन में क्वेश्चंस की क्यों है, वो कभी प्रसन्न रह नहीं सकते। तो जो प्रश्न चित्त है वो प्रसन्न नहीं, और जो प्रसन्न है कोई क्वेश्चंस नहीं है। छठा बहुत सुंदर बाबा ने डिफाइन किया कि कोई भी तस्वीर है, उसकी मुख्य दो विशेषताएं अगर हो तभी हम उसको फ्रेम करके लगाते हैं। कौन सी दो विशेषताएं? संतुष्टता और प्रसन्नता। कोई भी पिक्चर ले लो आप, अगर उसमें ये दो चीजें नहीं होगी ना, आप उसको फ्रेम करेंगे? अगर फोटो भी निकाला, सेल्फी भी निकाली और उसमें स्माइल नहीं दिखाई दे रही है तो क्या करेंगे? डिलीट मारेंगे उसको, है ना, करेंगे ना। तो ये तस्वीर की वैल्यू बढ़ाती है। और हम लोग कितने जन्म की तस्वीर बना रहे हैं अपनी? कितने जन्म की? केवल अभी वर्तमान? किसी के बेस्ड 21 बर्थ्स हैं, 84 जन्म है, केवल 21 जन्म तो नहीं है। और बाबा हमारी तस्वीर कैसी देखना चाहता है? बाबा ने कितनी बार मुरलियों में कहा है कि बाप बच्चों का हर्षित मुख देखना चाहता है। केवल वो पिता नहीं, लौकिक माता पिता भी क्या चाहते हैं? बच्चों का चेहरा कैसा हो? हमेशा खुश हो, प्रसन्न हो। थोड़ा भी इधर उधर होता है ना तो टेंशन किसको होता है? माता पिता को। एक संदेश में बाबा से पूछा गया था कि बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? तो बाबा ने कहा कि मैं बिल्कुल फ्री हूं वतन में, एक ही काम है, बच्चों को देखता रहता हूं। तो आप देखो 24 घंटा बाबा हमको देखता है तो उसको कैसा चेहरा दिखाएंगे? आप क्या दिखाना चाहते हो उसको? प्रसन्न। आप साकार बाबा, कोई भी सेंटर पर, कोई भी स्थान पर आप बाबा का फोटो देख लो, कैसा दिखाई देता है? प्रसन्न। स्माइल नहीं है, प्रसन्नता है, आत्मा की जो भरपूरता है वो रिफ्लेक्ट होती है प्रसन्नता के माध्यम से। और सातवीं डेफिनेशन बाबा ने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा ने कहा कि ये जो यज्ञ है, राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ, वो संपन्न कब होगा? तो बाबा ने कहा था जब सभी ब्राह्मणों की संतुष्टता और प्रसन्नता की आहुति पड़ेगी तब यज्ञ संपन्न होगा। ऐसा नहीं कि एक कोई संतुष्ट हो गया तो चलेगा, या पांच छह संतुष्ट हो गए चलेगा, या कुछ एक ग्रुप संतुष्ट हो गए तो चलेगा, नहीं। बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, क्योंकि जो अंत है ना वही आदि होना है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अंतिम समय जैसा हमारा चेहरा होगा, लास्ट हमारा जो पिक्चर होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा दूसरे जन्म में। और दूसरा जन्म हमको कहां लेना है? कहां लेना है? सतयुग में लेना है। तो कैसा चाहिए लास्ट पिक्चर? प्रसन्न। हो सकता है आज इस भट्ठी से हम सभी संकल्प करें, यहां से भट्ठी से आप ये गिफ्ट लेकर जाओ बाबा के पास, कुछ भी हो जाए हमें ये चेहरा सदा प्रसन्नचित रखना है। है पॉसिबल? है पॉसिबल? ऐसे यहां नहीं करना, बहुत टफ है, बहुत टफ है। एक बार हम क्योंकि आप कोलकाता से हो, हम एक बार निर्मल शांता दादी से राखी बंधवाने यहाँ आए थे, शांतिवन में थी दादी। तो राखी बांधने के बाद दादी हमेशा करती थी मुंह में टोली खिला कर कहती थी ओम शांति बोलो, है ना। फिर हमने दादी से प्रश्न पूछा था, दादी को कहा कि दादी बाप समान बनना हो तो क्या पुरुषार्थ करो, क्योंकि बहुत नजदीक थी निर्मल शांता दादी बाबा से। तो पता है दादी ने क्या कहा? सदा खुश रहना, बाप समान बनने का पुरुषार्थ मैंने पूछा था, क्या कहा? सदा खुश रहना। और फिर अटेंशन रखा कि सदा खुश रहूं कैसे? एक घंटे में तो इतने सारे पोज चेंज हो जाते हैं हमारे, तो सदा प्रसन्न तो बहुत बड़ी बात है ना। और बाबा ने ये मुरली में कहा है कि एक घंटे का पोज केवल अपना चेक करो कि क्या क्या आहा ओहो अच्छा ऐसे कितने सारे हम पोज देते हैं। बाबा चाहता है जो सदा प्रसन्न, सत्युग त्रेता में तो हम है ही देवी देवताएं, और द्वापर कलयुग में जो पूजन होना है वो हमारे पूज्य स्वरूप का होना है। उनके चेहरे भी देख लो कैसे हैं, प्रसन्न। इसकी ये प्रैक्टिस करो कि मैं चैतन्य देवी हूं। सोचो सामने हजारों भक्त हैं, कौन कैसा कौन कैसा कौन कैसा होगा, क्या क्या करते हैं भगत, कोई बहुत गुणगान गा रहा है, बहुत महिमा गा रहा है, कोई कंप्लेन ही कंप्लेन सुना रहा है कि मेरा ये नहीं सुना, मेरा वो काम नहीं हुआ, कोई काम की लिस्ट लेकर आएगा कि आज इतने इतने काम है वो कर देना, है ना, कोई गाड़ी से उतरेगा, कोई कंगाल भी होगा, कोई एक रुपया रख करके, मना कहते ना वो पहले के जमाने में ये होता था जो हमने देखा है, अभी तो पता नहीं क्या करते हैं, पर एक रुपया रखेंगे और 50 पैसा उठा लेंगे, ऐसे भी होते ना भक्त, मतलब एक देखो एक देवी या देवता जो खड़ा है वो सब कुछ देख रहा है लेकिन चेहरा एक समान, कोई फर्क नहीं, कोई महिमा भी कर रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई नाराज हो रहा है तो भी फर्क नहीं, होते ना देवी देवताओं से नाराज होते, बाबा से भी नाराज होते, होता है। तो हम इतना लंबा समय एक जैसा पोज रखने वाले हैं, जैसे एक फोटो अच्छा आता है तो हम कैसे तुरंत फॉरवर्ड कर लेते हैं, अच्छा नहीं होगा तो फॉरवर्ड करेंगे, भगवान हमारा लास्ट पिक्चर फॉरवर्ड करने वाला है तो कैसा देंगे अभी से सोच लेना, ठीक है। तो यह है संपूर्ण आहुति डालना। अभी देखो इतने सारे गुण हैं, आपने शांति स्तंभ के सामने भी हिस्ट्री हॉल के बाहर लिस्ट दिया है दिव्य गुणों का, कहते हैं 36 दिव्य गुण है, कोई बहुत समझदार को बहुत होशियार हो तो उसको मिक्स करके बहुत सारे और भी गुण बना सकते हैं, राइट, प्रेम है, शांति है, नम्रता है, फॉरगिवनेस है, अंतर्मुखता, कितने सारे गुण हैं, लेकिन सर्टिफिकेट किसका लेना है, संतुष्टता का, है ना, प्रेम का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, शांति का नहीं लेना है, सुख का नहीं लेना है, और किसी गुण का नहीं लेना है, सर्टिफिकेट केवल एक ही गुण का लेना है, संतुष्टता का। और उसी को बाबा ने कहा है कि संतुष्टता सर्व गुणों का राजा है, एक आएगा ना सारी सेना मिल जाएगी आपको, सारे गुण आ जाएंगे, सर्टिफिकेट वो भी एक का नहीं चलेगा, कितने सर्टिफिकेट चाहिए संतुष्टता के भी, 3 सर्टिफिकेट, स्वयं से, परिवार से, बाबा से, है ना, 3 सर्टिफिकेट लेने हैं ना, ये क्यों 3-3 सर्टिफिकेट रखे हैं बाबा ने, एक तो कभी भी कहां भी किसी भी एग्जाम में कभी आपने ये सुना कि मार्क्स जिसने एग्जाम दी है उसी को कहा जाए कि भाई आप ही अपना मार्क्स निकाल लेना, मार्क्स दे देना अपने आप को, होता है कभी ऐसा कोई भी एग्जाम में, लेकिन बाबा कितना भोलानाथ है और कितना प्यार है हम बच्चों से, कितना विश्वास है हम बच्चों से, उसको पता है ये मेरे बच्चे बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है, सच्चाई सफाई वाले हैं, तो उसने हमको परमिशन दी है कि स्वयं भी स्वयं को सर्टिफिकेट दे देना चलेगा, लेकिन उसमें उसको लगा कि थोड़ा डाउट है ना, संपूर्ण विश्वास है लेकिन 0.1% ऐसा है कि काम मियां मिट्ठू ना बन जावे, अपने तो हम तो अच्छे ही है ना, लोग हमेशा क्या मांगते, प्रॉब्लम तो सामने वाले में है, हम तो अच्छे ही है, तो इसलिए उसने दूसरा एक ऊपर रखा सर्टिफिकेट परिवार से, चाहे वो लौकिक परिवार है चाहे वो अलौकिक परिवार है, लेकिन उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरा बहुत अच्छे से जज कर सकता है हमको, तो उसने रखा वो, लेकिन उसमें भी उसको उतना वो नहीं हुआ कि परफेक्ट आएगा सर्टिफिकेट, क्योंकि कई बार हम लोगों ने अनुभव किया है कि जिस आत्मा को हमसे ईर्ष्या होती है, देगा वो सर्टिफिकेट आपको, है ना, कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो आप, लेकिन उसके मुख से। और ये सर्टिफिकेट बहुत टफ भी है ना, तो वो नहीं देगा। तो फिर उसने फाइनल सर्टिफिकेट अपने पास भी रखा है, क्योंकि हम जो है, जैसे है, जो भी कर रहे हैं, वो सब किसको पता है, वो तो जानता है ना, उसके पास चार्ट क्लियर है। और वो जो सर्टिफाई करेगा वो एक्यूरेट करेगा, सच्चाई सफाई से होगा। तो ये तीन सर्टिफिकेट हैं, लेकिन ये तीन सर्टिफिकेट कब मिलेंगे हमको, उसका भी आधार है। तो चार आधार है उसके, ये तीनों सर्टिफिकेट लेने के, एक साथ ही मिलेंगे, लेकिन चार आधार कौन से हैं? चार बातों की प्रसन्नता। कौन सी चार बातें? एक तो स्वयं से प्रसन्न रहो, दूसरा खुद प्रसन्न रहो, और दूसरों को प्रसन्न करो, और दूसरे हमसे प्रसन्न हो, ये दूसरा सर्टिफिकेट। तीसरा ड्रामा से प्रसन्न रहना, हर सीन से प्रसन्न रहना, और बाबा से, ठीक है। ये चार बातों की प्रसन्नता, ये तीन बातों का सर्टिफिकेट हमको दिलाएंगे। तीन सर्टिफिकेट लिखे, स्वयं से, परिवार से, और बाबा से। और प्रसन्नता, हाँ, वो चार सर्टिफिकेट, तीन सर्टिफिकेट लेने का आधार चार बातों की प्रसन्नता है। स्वयं से प्रसन्न, दूसरों को प्रसन्न करना, और दूसरे हमसे प्रसन्न हो, ये दोनों बातें चाहिए उसमें। ड्रामा से और बाबा से प्रसन्न, यहां हमको चेक करना है। स्वयं से प्रसन्न रहने का आधार क्या है? स्वपुरुषार्थ, ठीक है। अगर स्वपुरुषार्थ एक्यूरेट है, आप प्रसन्न ही रहेंगे। आप सबने अनुभव किया है, मान लो कि आपने जो संकल्प किया उस प्रकार सब कुछ हो रहा है, प्रसन्न है। उस प्रकार आप ही नहीं कर पाए, जैसे यहां संकल्प किया कि भाई रोज अमृत वेला करेंगे और नहीं हुआ तो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो स्वयं का पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए। उससे मुश्किल है दूसरों को प्रसन्न करना और दूसरे हमसे प्रसन्न हो, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हम सबने अनुभव किया है कि आप किसी का 99 काम करो, एक नहीं करना, क्या होगा? खुश होंगे? उनको वही दिखाई देगा जो वो एक नहीं किया है ना, वही दिखाई देगा, उसी से अप्रसन्न रहेंगे, होता है ना। बहुत टफ है। चलो हम तो फिर भी प्रसन्न हो जाए, कोई कुछ भी देता है फिर भी हम खुश रहे, लेकिन उनको खुश करना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी उसमें 5% की छुट्टी बाबा ने दी है। बाबा ने कहा कि 5% लोग ऐसे होंगे जो आपसे अप्रसन्न रहेंगे। यह अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि इतनी छूट है हम बच्चों को, क्योंकि बाबा मम्मा से भी नाराज होने वाले थे यज्ञ में। तो वो पता है कि 5% तो ऐसे रहेंगे, आप कुछ भी कर लो लेकिन वो अप्रसन्न रहेंगे। लेकिन फिर 5 से ऐसे नहीं कि हाँ वो सारे ही 5 में ही गिन लो, क्या ये अप्रसन्न, ठीक है वो 5 वालों में से होगा, नहीं, सब कोई प्रसन्न होना चाहिए हमसे। हमारा लक्ष्य ये नहीं हो कि 5 वाले भले अप्रसन्न रहे, हमारा टारगेट हो 100% हमसे प्रसन्न हो, हमारा पुरुषार्थ हो 100% हम अपना देवे, उसमें से फिर उनके संस्कार अनुसार वो अप्रसन्न रहे वो चलेगा, है ना, वो 5% हो सकते हैं। ड्रामा से प्रसन्न रहना, बहुत सारी पॉइंट्स है, अगर वो सुनाने जाऊंगी तो सारा क्लास ही उसी में चला जाएगा। हर सीन से प्रसन्न रहना, मम्मा उसके लिए कहती थी कि ड्रामा की पटरी पर मन और बुद्धि एक्यूरेट चले, न थोड़ा आगे न थोड़ा पीछे। इसको भी मनमना भव कहा है, ठीक है। तो जो है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करे, प्रेजेंट मोमेंट को फील करे, उसी को हम फुलेस्ट दे। हम बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करें, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं सुना रही हूं, आप अभी सुन रहे हो, तो मैं अपने आप में फुलेस्ट दूं, बहुत खुश होकर के वो मैं आपको सुनाऊं, और आप भी खुश होकर के एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, तभी तो प्रसन्न रहेंगे। कोई और टाइम नहीं आना है कि हम उसमें फिर खुश होंगे या स्माइल देंगे। बाबा से प्रसन्न, आप कहेंगे उसमें से तो कौन नाराज होगा बाबा से, है ना, वो तो उससे तो प्रसन्न नहीं है हम सभी। लेकिन बाबा ने ही मुरली में कहा है कि कई बार बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, किस बारे में, कहते बाबा आप तो कह रहे थे ये सहज राजयोग है, पर ये तो सहज तो लग नहीं रहा है, ये तो सहन या राजयोग लग रहा है, सहन करने का मार्ग लग रहा है, क्योंकि जब परिस्थिति आती है, विघ्न आते हैं, मुश्किलें आती है, जब टफ टाइम्स होते हैं, तब हम सोचते हैं कि बाबा तो कहता है सहज योग, सहज ज्ञान, ये सहज तो कुछ भी नहीं लग रहा है, सहन करने का लग रहा है, जैसे यहाँ सहन करने के लिए ही आए हैं। तो क्या है अनुभव, सहज योग या सहन योग है? उसके लिए बाबा ने कहा है कि बाबा ने बच्चों को सारा ज्ञान दिया, सारी शक्तियां दी, सारे गुण दिए, उसको यूज करेंगे तो मोस्ट इजी है ये मार्ग, पर अगर यूज नहीं किया तो मोस्ट डिफिकल्ट है ये मार्ग। तो गुण ज्ञान शक्ति को जिसने समझा, जिसने धारण किया, जिसने प्रयोग में लाया, उसके लिए बहुत सहज है, लेकिन नहीं किया तो मोस्ट टफ भी है, राइट। तो फाइनल बाबा ने कहा था कि अंतिम प्रश्न जो होगा, हम कहते हैं ना एक सेकंड में लास्ट पेपर होगा, अंतिम पेपर संतुष्टता का ही पूछा जाएगा। क्यों? आज जो भी हमारी अवस्थाएं बिगड़ती है, चाहे किसी से घृणा है, नफरत है, क्रोध आता है, जो कुछ भी आता है, उसके रूट कॉज में आप जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? असंतोष। मैंने आपको कहा, आपने नहीं माना, मैं असंतुष्ट हो गई, मुझे गुस्सा आया, मेरी प्लानिंग के अनुसार नहीं चल रहा है, असंतोष। संतुष्टता ही एग्जाम का क्वेश्चन है, और आंसर प्रसन्न होकर देना है ना, प्रसन्न होकर देना है। अभी आप सोचो कि किसी को, कोई भी स्टूडेंट को, उसका क्वेश्चन भी मालूम हो, उसका आंसर भी मालूम हो, तो सहज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, फिर भी टफ बहुत है, सहज क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उसके लिए सात कारण बाबा ने बताए हैं, क्यों हम असंतुष्ट रहते हैं। सबसे पहला कारण बाबा ने कहा, छोटी बड़ी अवज्ञाएं, छोटी बड़ी अवज्ञाएं। कितनी बड़ी तो करते नहीं है, कोई बड़ा बड़ा विकार तो है नहीं, है ना, इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन बाबा ने बहुत सारी वाणियों में ये कहा है कि ये महापाप है। उसमें क्या क्या आता है? किसी की निंदा करना महापाप है, किसी को पागल कहना महापाप है, किसी की ग्लानी करना, किसी को लांछन लगाना, ये सब महापाप में आता है। ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर हम किसी के बारे में कुछ भी बोल लेते हैं, ये महापाप में आता है। सुनी सुनाई बातों पर, आपने देखा, आपने अनुभव किया, तब कुछ बोलो। आपने केवल सुना, उसके बेस पर आप किसी को भी सर्टिफिकेट देने को तैयार हो जाते हो, व्यक्ति को दे दिया, कभी सुधरेगा ही नहीं। कभी सेंटर को सर्टिफिकेट दे दिया, कभी टीचर्स को सर्टिफिकेट दे देते हैं, कभी मधुबन तक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि यहां तो सब ऐसे ही चलता है। करते हैं ना हम सर्टिफिकेट, हमें लेना है, देने के लिए नहीं कहा है बाबा ने। हम किसी के बारे में क्यों बोले, क्यों पाप बनाए हम? अगर मान लो कि राइट है, वो इंफॉर्मेशन भी चलो राइट है, फिर भी हम क्यों बोले? कई बार होता है ना, हम राइट है तब तो हम बोले। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? जब आप सच्चे हो तब बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? कंफ्यूज्ड है? नहीं बोलना चाहिए ना, बाबा ने तो नहीं कहा है हमको। और एक सिंपल सा उदाहरण, मान लो कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने जाना है स्कूल में बच्चों का। आप गए ऑफिस में, कुछ कारोबार चल रहा था, प्यून कहेगा आप यहां बैठो अभी देते हैं। 5 मिनट हो गई बैठे रहे, 10 मिनट हुई बैठे रहे, 15 मिनट हुई बैठे रहे शांति से। फिर 15 मिनट के बाद आपके पास बहुत काम था, आप भी फ्री नहीं थे लेकिन बैठना पड़ा। 15 मिनट के बाद आप प्यून को कैसे पूछने जाएंगे? बहुत शांति से पूछेंगे ना कि भाई कुछ हुआ, बस ये सर्टिफिकेट लेना है। कहते नहीं नहीं अभी बैठो, और आधा घंटा बिठाया। फिर गुस्से होने से काम नहीं चलेगा, अगर प्यून बिगड़ा ना तब तो वो स्कूल लिविंग मिलेगा नहीं उस दिन। हम लोग सब अनुभवी, डेथ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, ज्यादातर ये मिल जाता है। कितने धक्के खाते हैं, एक बार गए कहते और एक डॉक्यूमेंट लेकर आओ, फिर वापस जाएंगे, फिर और डॉक्यूमेंट, फिर और। हमको होता है भाई एक साथ दे दो ना लिस्ट क्या क्या चाहिए। धक्के खाएंगे, चुपचाप करते हैं, करते हैं ना, क्योंकि चाहिए हमको सर्टिफिकेट। उसके बिना नहीं चलेगा, वो हमारी डिमांड है ना, उसके बिना नहीं चलना है, नेसेसिटी है हमारी। तो शांत रहकर चुप, भले अंदर से कितना भी गुस्सा आ रहा है लेकिन बोल नहीं सकते। शांति से ही हमको धक्के भी खाएंगे और लेंगे भी सही उसको, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट के बिना बैंक में कोई भी कारोबार नहीं कर पाएंगे आप, लेना ही पड़ेगा वो। करते हैं ना, ये छोटे मोटे सर्टिफिकेट के लिए इतनी शांति बनाए रखते हैं। और ये जो संतुष्टता का सर्टिफिकेट है, 21 जन्म के लिए लेना है, उसी के आधार पर हमारे पद फाइनल होने वाले हैं। उसके लिए हम शांत नहीं रह सकते? थोड़ा रह सकते या नहीं रह सकते? अरे जिसको जो बोलना है बोलने दो, वो उनका ड्रामा है ना। हम तो शांत रहे, शांत रहने के ऊपर प्रसन्न रहना है ना। ऐसे नहीं कि चुप रह करके, चुप तो रहते हैं हम, 5 दिन भी चुप रह रहते हैं, लेकिन कैसे प्रसन्न तो नहीं रहते, वो चुप रहते शांत नहीं रहते, अंदर तो ज्वालामुखी फट रही है ना। नहीं, शांत रहना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना है। मान लो किसी ने 50 शब्द बोल सुना दिए आपको, सब घर गृहस्थ में रहते हो, 50 शब्द सुना दिए, आपने हाइट्स आ गई, तब आपने 5 शब्द केवल बोले, सर्टिफिकेट मिलेगा? आप सब अनुभवी है, 5 शब्द भी बोलने बाद आप शांत रहेंगे? आपके मन में भी तो चलेगा ना, एक तो स्वयं ही स्वयं को सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, वो ही कैंसिल हो गया पहले तो। और जिसको आपने 5 शब्द सुनाए वो तो देने से ही रहा, वो तो देगा ही नहीं, और बाबा देगा। केवल 5 शब्द बोले आपने, बाबा देगा सर्टिफिकेट कि चलो मेरे बच्चे ने, उसने 50 सुनाया, मेरा बच्चा तो 5 ही बोला, तो इतना महान तो है ही ये बच्चा। बाबा ने शिक्षा जो दी है ना हमको, निंदक को भी मित्र बनाओ, गाली देने वाले को गले लगाओ, इतनी हाइट तक बीच में बोला था ना, गाली देने वाले को, क्रोध करने वाले को बाबा कहते गुलाब दो, उसको फूल दो, बोला था ना मुरलियों में आता है, हाइट्स ऑफ पॉजिटिविटी है ना। बाबा ये चाहता है हमसे, जब तक हम उस लेवल पर नहीं करेंगे ना, तब तक वो भी सर्टिफिकेट नहीं देगा। और हम कहने में क्या कहते, मैं तो कुछ नहीं बोला, एक शब्द तो बोल लिया, है ना। आग भड़की है, उसमें एक बूंदी डाल दो, घी क्या होगा। हम नहीं अलाउड है, कुछ भी करे सामने वाला हमें संतुष्ट रहना ही होगा। छोटी बड़ी अवज्ञाएं जो बाबा ने श्रीमत दी है, अगर उस अनुसार हम व्यवहार नहीं करते ना, हमारा मन भी खाता है, लोग भी संतुष्ट नहीं रहते हैं और बाबा भी नहीं रहते हैं। और इसलिए दादी जानकी कहते थे कि ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है योग नहीं लगना। ये जो छोटी मोटी अवज्ञाएं होती है ना, इतना भारी कर देती है कि जैसे रेड लाइट ऑन होगी ना, यहां जुटका मारना शुरू करेंगे। ये पाप है, ये बोझ है आत्मा पर, तभी तो योग लग नहीं रहा है। योग में जो सुख मिलना चाहिए, विकर्म विनाश ज्ञान नहीं करता है, विकर्म विनाश योग करता है। और योग में ही नींद आती है तो विकर्म विनाश कब करेंगे। ये बोझ है आत्मा पर। दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग। असंतोष का कारण मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। क्या गलतफहमी क्या है? हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है, खराब होता है, नेगेटिव होता है, दुख देने वाला होता है, पेनफुल होता है, जो भी मेरे पास साथ होता है, उसका कारण दूसरे हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। कारण कौन है? बाबा ने कभी मुरली में नहीं कहा कि आपके दुख का कारण कोई और है। बाबा ने क्या कहा? हम अपनी ही वीकनेसेस के कारण दुखी होते हैं। हमने समझा नहीं तब दुखी होते हैं। ड्रामा के राज को नहीं समझा तो नाराज होते हैं। और इसलिए बाबा कहता है कि जो सदा राजी रहता है वो राजा बनता है। उदास होने वाला तो दास बनता है। तो हर सिचुएशन में आपको राजा बनना है, भविष्य का राजा तो दूर की बात है। कोई भी सिचुएशन अभी है, आपको अगर उस सिचुएशन को लीड करना है, उसका किंग बनना है, सबसे पहले राजी रहना सीखो। सब राज को जानकर राजी रहना सीखो, तब लोग आपको फॉलो करेंगे कि ये इतना खुश रहता है, चलो इससे पूछते हैं टिप्स, है ना। तो राजा भविष्य का नहीं, इसी घड़ी से मुझे राजा बनना है। और उसके लिए राजी, खुश रहो। बारिश गिरी तो भी खुश, धूप निकलेगी तो भी खुश, प्लान चौपट हो गया तो भी खुश, उसमें भी कल्याण है, है ना। हर चीज में खुश रहना है, राइट। और इसलिए किसी ने खूब कहा है कि सारी जिंदगी आईना पोछते रहे, अंत में पता चला कि दाग तो चेहरे पर था, है ना। हम दूसरों को ठीक करते रहे, दूसरों को नहीं करना है, खुद को करना है, है ना। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दो। बाबा ने कहा कि दुख का कारण हम स्वयं है, हमारी सोच है। इसलिए मैं हमेशा ये मानती हूं कि अगर प्रश्न मैं हूं तो उत्तर भी मैं हूं, अगर मैं समस्या हूं तो समाधान भी मैं हूं। उसी को ठीक करना है। तीसरा कारण है असंतोष का, वो है इच्छाएं। बाबा भी कहता, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती है। सूक्ष्म कामनाएं, कल सूरज भाई भी कह रहे थे ना, सूक्ष्म कामनाएं आत्मा की शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। और हमारी कामनाएं भी कैसी, छोटी छोटी। दीदी ने ओम शांति नहीं बोला, दीदी ने टोली नहीं खिलाई, इतनी सेवा करके आए, दीदी ने पूछा तक नहीं, है ना। दीदी क्या हमारे सहभागी जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी होता है? अभी तो मैं कभी ना बोलू उसको ओम शांति, उसने देखा लेकिन बोला नहीं। अभी देखो आप सबको मैं देख रही हूं ना, देख रही हूं, नजर सब तरफ घूम रही है लेकिन फोकस नहीं हूं मैं। कई बार होता है ना सेंटर में दीदियों को भी ऐसा होता, बिजी होते हैं कारोबार करते हैं, ऐसे नजर भी घूमी होगी पर नोटिस नहीं किया होगा कि आप आए हो, रह जाता है। और उस बात को लेकर के हमारे वहां एक हुआ था दूसरे सेंटर पर जो नोटिस किया था, उसकी बात केवल दीदी ने उस भाई को वो कुछ सामान लाया था उसका थैंक यू नहीं बोला, उसने बाबा को छोड़ दिया। इच्छाएं बहुत खतरनाक है, हम सोचते हैं ना उसमें क्या है, छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक बार रमेश भाई जी सुना रहे थे, एक युगल था यज्ञ में, बहुत वीआईपी सेवा करता था, बड़ों बड़ों से मिलता था, पीआर थे यज्ञ के, पब्लिक रिलेशन का टाइटल दिया था उन दोनों को, युगल थे। तो बड़े रईस घराने से थे, बेगरी पार्ट आया यज्ञ का, तो उन्होंने रूमाल माला मांगा, ना मखमली रूमाल वो यूज करते होंगे तो यज्ञ से चाहिए था। तो वो भंडारी के पास गए, तो भंडारी ने उस समय जो भी रुमाल होगा खादी का उस समय में ना, जैसे मोटा सा कपड़े का, तो वो दे दिया। कहते नहीं हम तो मखमल का ही रुमाल यूज करते हैं। तो भंडारी ने कहा कि मेरे पास तो जो है वो यही है, आपको चाहिए तो आप मम्मा के पास जाएं। तो मम्मा के पास गए, मम्मा को कहा कि मम्मा हमको तो मखमल का ही रुमाल हमने आज जीवन यूज किया है, हम ये तो नहीं यूज कर सकेंगे। तो मम्मा ने कहा कि आप बाबा से बात करें, बाबा के पास गए। तो बाबा ने भी तो यही कहा कि देखो बच्चे यज्ञ में तो यही है जो सबको दिया जाता है, तो यही से चला लो तो अच्छी बात है। उन दोनों ने यज्ञ छोड़ दिया, किसके कारण? रूमाल के कारण। सत्य घटना है ये। फिर रमेश भाई जी ने सुनाया था बहुत टाइम सालों के बाद जब वो यूके में गए थे, तब वो युगल वहीं पर था, काफी एज हो गई थी, उनको मिले फूट फूट कर रोए कि एक मखमली रूमाल के कारण यज्ञ छूट गया उनसे। छोटी छोटी चीजें होती है और हमें पता नहीं कि ये छोटी छोटी इच्छाएं इतनी बड़ी पनिशमेंट दे सकती है हमको। संतुष्ट जो है जैसा है जितना है सब में चलेगा, है ना? और इसलिए हम बहनें जब समर्पित होती ना सबसे पहला वायदा ये करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जहां बिठाया जो खिलाया, जहां सुलाया जहां रखा, संतुष्ट होकर रहो, खुशी से रहो, मजे से रहो। लेकिन ये इच्छाएं बहुत बड़ी बात कर सकती है, भगवान को भी छुड़ा सकती है। तो इच्छाओं का त्याग। देखो सतयुग में विश्व महाराजन और विश्व महारानी और दास दासी चंडाल सारी प्रजा, सतयुग में कौन जाएगा? बेसिक वीजा किसको मिलेगा? जो मन वचन कर्म से पवित्र है। ओके, बेसिक वीजा तो ये चाहिएगा ना। चंडाल को भी, सतयुग का चंडाल, वो भी मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र होगा, क्योंकि अपवित्र तो जा ही नहीं सकता। विश्व महाराजन भी पवित्र है। दोनों की पवित्रता में क्या डिफरेंस है? सारी आत्माएं पवित्र हैं, प्रकृति सतो प्रदान है, लोक सतो प्रदान है, महाराजन भी सतो प्रदान है, दासी भी सतो प्रदान है, सब कुछ सतो प्रदान है, ग्रेडेशन क्यों है? तो सॉरी, पास भी तो ऑनर है लेकिन फिर भी वो पास वाले हैं, ये बात जरूर है। फेल वाले तो कहां जाएंगे? त्रेता में जाएंगे। पास वाले सतयुग में जाएंगे। और हमारा पासिंग मार्क्स कितना है वो पता है? स्कूल में होता है ना कभी 50 मार्क्स की एग्जाम होती है तो 18 मार्क्स पासिंग होता है, 100 मार्क्स की एग्जाम होती है तो 35 मार्क्स पासिंग होता है। हमारी पासिंग मार्क्स कितनी है? 75% पासिंग है हमारा। पासिंग 75 के नीचे फेल वाले त्रेता में जाएंगे। तो जो सत्युग वाले तो पास वाले हैं, इसका मतलब 75% तो है ही है उनके पास। अच्छा हाँ, तो जितने जिन्होंने हाथ पकड़ के रखा है वो सारे सतयुग में आएंगे। बाबा ने मुरली में कहा था 7 steps of purity, उसमें बाबा ने ये कहा था कि जो विश्व महाराजन की पवित्रता है वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाली पवित्रता है। माना कामनाओं का अंश वंश भी नहीं होगा, काम विकार नहीं, कामनाएं भी काम विकार का अंश है, उनको कोई प्रकार की कामना नहीं होगी, कोई प्रकार की इच्छा नहीं होगी। इच्छा क्या है उसकी भी अविद्या है, पता ही नहीं है कि इच्छा क्या है, ये मेरे को चाहिए वो समझ ही नहीं है। इस हाइट पर विश्व महाराजन बनेंगे, हाईएस्ट प्योरिटी है ये, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। ठीक है, चौथी बात असंतुष्ट होने की, लीकेज। और लीकेज का कारण है लगाव, 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 झुकाव, अभाव, प्रभाव, ये सारा ही लीकेज है। आपको पता हो लगाव वाला इतना याद नहीं आता ना जितना अभाव वाला याद आता है। अभाव माना जिसमें कुछ कमी है, जो आपको तकलीफ दे रहा है वो ज्यादा याद आता है ना। अटैचमेंट वाला भी याद आता है लेकिन जो बार बार तकलीफ दे रहा है ना वो ज्यादा याद आता है। उसकी एक शब्द उसका इतना अखरेगा ना आप सहन नहीं कर पाते। किसी से न लगाव है न भाव है, न झुकाव है न प्रभाव है। हाँ कोई बहुत अच्छा है, अच्छा है, लेकिन वही चाहिए वहां प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती, कहते उसमें क्या बड़ी बात है। अगर एकोमोडेशन भी दिया दीदी को, कहेंगे दीदी मेरा एकोमोडेशन इसके साथ रखना ना थोड़ा अच्छा रहता है। लीकेज है ये भी, मधुबन जाने का अनाउंस होगा तो पहले पूछने आएंगे दीदी को कि वो जाने वाले हैं मधुबन तो फिर मैं भी चलूं, है ना, वो नहीं जा रहे तो मैं भी कैंसिल हो जाऊं, किस लिए जा रहे। योग करने में भी बैठेंगे ना हम, कई बार बाबा की झोपड़ी में भी देखते हैं कि बाजू वाली सीट खाली होती है और अपनी सखी नीचे बैठी है तो उसको हिलाकर कहेंगे अब भी आ जाओ, है ना। योग किससे करना है, उनसे करना है साथ में बैठकर करते हैं ना। व्हाट्सएप पर बुलाएंगे यहां आ जाओ योग चल रहा है बहुत अच्छा क्लास। भाई किससे योग लगा रहे हो आप, है ना? हम समझते ये कोई इतना बड़ा कोई लगाव का टैग नहीं है, यही झुकाव है। जो बुद्धि झुकती है कहां, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी सुविधा में, है ना, बहुत बड़ा लीकेज है ये, असंतुष्ट कर देगा आपको। कभी ज्ञान में होता है ना माताएं बहुत प्रसन्न होती है, बाबा मिला है ना, लेकिन दुखी भी होती है, मेरे बच्चे को बाबा अपना नहीं बनाता, है ना, मेरा बच्चा चल जाए ज्ञान में, असंतुष्ट रहेगी बेचारे, है ना। नहीं, हर प्रकार से बाबा ने ये नहीं कहा कि लौकिक जो ब्लड कनेक्शन है उससे लगाव चलेगा, है ना, दूसरों से नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कहा बाबा ने। कोई भी हो देहधारी, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, अभाव नहीं, प्रभाव नहीं, है ना, उसमें ये बहुत है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, है ना। लीकेज को हम समाप्त करें। पांचवी बात है, किसी का स्वभाव होता है कंपैरिजन का, स्वभाव कंपैरिजन का, तो बाबा ने कहा कि उससे दो संस्कार क्रिएट होते हैं, दिल शिकस्त होना और ईर्ष्या उत्पन्न होना। कंपेयर किया तो कुछ तो होगा ही ना। अगर मैंने किसी से भी कंपेयर किया तो या तो मैं उससे लो फील करूंगी या तो मैं उससे हाई फील करूंगी, दो में से कुछ तो होगा ही। कंपेयर सेम तो होता ही नहीं है कि हाँ वो भी मैं है ना। एक बाबा केवल हमको योग में सिखाते हैं कि मैं भी शांत स्वरूप आप भी शांत स्वरूप है ना, मैं भी परमधाम निवासी आप भी परमधाम, सेम लेवल पर वास्तव में है ना ये ऊपर नीचे होना दिल शिकस्त ईर्ष्या उत्पन्न करेगा और इसलिए ये गांठ मार ले हम अपने मन में कि हम अलग हैं। हर मुरली में बाबा कहता है एक न मिले दूसरे से, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। लेकिन सारा टाइम अगर हमारे संकल्पों को चेक करें तो कंपैरिजन में ही जाता है संकल्प। उनके जैसा बोलना, उनके जैसा चलना, उनके जैसा भाग्य, कंपैरिजन। कोई भी गवर्नमेंट कार्य में आप जाते हो तो वहां फोटोकॉपी चलती है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं? ओरिजिनल देने पड़ते हैं ना। तो हम फोटोकॉपी क्यों बन रहे हैं लोगों की? उसकी जैसा करने में तो फिर कॉपी करनी पड़ेगी ना। ओरिजिनल रहो आप, जब जो है जैसे हो ओरिजिनल रहेंगे ना तो आप संतुष्ट भी रहेंगे और लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर मैं किसी की कॉपी करके उसके जैसा बोलना शुरू करूं, मान लो आप लोग प्रसन्न होंगे? होंगे? नहीं होंगे। कभी कोई प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए किसी की भी जेरोक्स कॉपी बनना छोड़ दो, जो है जैसे है ओरिजिनल रहो। ओरिजिनल दो अर्थ होता है, एक है अपने सत्य स्वरूप जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें रहो, और अभी भी जो है वो भी ओरिजिनली रहो, नेचुरल रहो, आप संतुष्ट रहेंगे भी, जो भी किया मजा आ गई। ठीक है, एक स्टोरी याद आती है। एक कौवा था, हमेशा दुखी, इतना रोता था, मेरा कलर काला, मेरे को कोई पूछता नहीं, मेरे को देखना पसंद नहीं करता, मेरा को सुनने को पसंद नहीं करता। कौवे को कौन सुनने को पसंद करेगा? तो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में और हमेशा रोए रोए रोए। तो एक बार एक संत वहां से गुजर रहे थे, बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने देखा ये कौवा रो रहा है, तो उसने पूछा भाई क्या बात है? तो वही कंप्लेन, भाई मेरे को कोई देखता नहीं, मेरा कलर ऐसा है, मेरा आवाज ऐसा है, कोई सुनता नहीं है मेरे को, कोई मेरे को पूछता नहीं है, मेरे को कोई खिलाता नहीं है, केवल एक ही मांस खिलाते, कौन से मांस? दुषाद का मांस होता है ना, तब वो उसको बेचारे को खीर पूरी खिलाएंगे, बाकी हाँ पितृपक्ष वाला है ना तब खिलाएंगे, बाकी उसको कौन पूछता है कि भाई हाँ इसको खिलाने के लिए कुछ दो? कोई नहीं खिलाता। तो संत कहते हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ लिया, अभी मेरे पास मेरे तप के आधार पर बहुत शक्तियां सिंचित है, आप जाकर के किसी भी पक्षी को आप देख लो और उसके जैसा बताओ कि मुझे ऐसा बनना है, मैं तथास्तु करूंगा, आप उस पक्षी जैसा बन जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? तो कहते ठीक है, वो भी खुश हो गया, निकला देखने के लिए भी मैं किस पक्षी जैसा बनूं, भी तथास्तु मिलेगा। तो वो जा रहा था तो एक तालाब में बहुत सुंदर हंस तैर रहा था, तो कहते कि कितना व्हाइट ये, मैं तो एकदम से काला है ना, ये कितना सफेद है, कितना अच्छा है। तो वो जाकर के हंस को कहता है कि हंस आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो है ना, आप तो बहुत संतुष्ट होंगे। तो हंस कहते क्या संतुष्ट, सारी लाइफ एक व्हाइट ही कलर, नो कलर एल्स, हाँ मेरी लाइफ में तो कोई कलर ही नहीं है, मैं तो बेरंग ही हूं, ऑलवेज व्हाइट। तो कहते कि तो फिर कौन संतुष्ट होगा? तो कहते पैरेट हो सकता है, पैरेट बहुत ब्यूटीफुल है। तो कहते ठीक है, उसको तो लोग खिलाते भी है, उसका सुनना भी पसंद करते हैं, उसको बुलाते भी है, बुलवाते हैं उससे, हाँ ये बात ठीक है। तो वो फिर उड़ता उड़ता पैरेट के पास गया, कहते कि पैरेट आप तो कितने अच्छे हो, इतने सुंदर दिखते हो, एकदम ग्रीन ब्यूटीफुल, और लोग आपको देखना भी पसंद करते हैं, आपको अपने घर में रखते हैं, रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बुलाते हैं, राम राम बुलाते हैं, आपको जो मर्जी आए वो खाना खिलाते हैं, मिर्ची आपको जो पसंद है वो खिलाते हैं, मेरे को तो कोई नहीं खिलाता है, आप तो कितने संतुष्ट हो। तो पैरेट कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ना हमेशा डर के मारे जीता हूं कि कहां मेरे को पकड़ ना ले कोई, तो मैं तो हमेशा भय में रहता हूं। और आप सुंदरता की बात करते हो ना, तो मेरे से तो बहुत ब्यूटीफुल मोर होता है, पिकॉक होता है, मल्टीपल कलर्स और बहुत सुंदर। तो उसको लगता कि हाँ बात तो राइट है ये भी। तो फिर वो उड़ता उड़ता कि एकदम से तुरंत पिकॉक मिल जाए तो कहाँ मिलेगा, लेकिन जू में जाता हूं। अभी जू में जहां पिकॉक बंद था ना, उसके ऊपर की डाली पर वो बैठा था, देख रहा था, इतने लोग आ रहे हैं उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, इतना प्रेज कर रहे हैं, और वो जब वो डांस करता है इतना अच्छा लगता है, वो सब कुछ देख रहा था। तो जैसे लोग जाते हैं, फिर वो आता है पिकॉक के पास और पिकॉक को कहता है कि अरे आपकी लाइफ तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छी है, इतना सुंदर कि इतने हजारों लोग, मैं तो कब से यही देख रहा था कि कितने लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतने फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं आपके साथ, बहुत महिमा करता है, कितना आप तो बहुत संतुष्ट होंगे। पिकॉक कहता है कि मैं कुछ दिनों से रोज भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान मुझे कौवा क्यों नहीं बनाया, कोई देखने वाला न वही, कोई पूछने वाला नहीं, अपनी मस्ती में मस्त उड़ो, खाना हो तो खाओ, या तो जबरदस्ती खिला खिला कर पीछे पड़ते हैं कि खाओ खाओ करके, है ना। तो कहते कि इतना निश्चिंत जीवन, जो करना है मस्ती से उड़ो, जब मर्जी खाओ, जो इच्छा हो खाओ, जहां इच्छा हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। तब कव्वे को समझ में आया यही ठीक है, यही अच्छा है, है ना। क्यों कंपेयर करना, हम जो है जैसे, और बाबा ने तो मुरली में कहा है कि संगम युग पर काले, बहुत अच्छा है ना, बाबा ने मुरली में बोला है, जो है जैसे है, प्रभु प्रिय है, प्रभु को पसंद है, तब तो उसने करोड़ों में से सिलेक्ट किया है, उसके घर में बैठे हैं, उससे और क्या चाहिए, है ना। तो जो है उसमें मस्त रहो, कंपेयर किसी से नहीं करो, है ना। सबको ये होता है कि जो फेमस होते हैं उसके जैसे हम बोलना सीखे, आप जो है उसी में रहो, है ना। छठा है हिसाब किताब। कई बार ऐसा होता है कि हिसाब किताब आपको संतुष्ट प्रसन्न रहने नहीं देता है, होता है ना, कभी कभी कुछ नहीं होता है हमारे लाइफ में, उस दिन तो कुछ ही नहीं होता है, लेकिन उस दिन बहुत जोर जोर से रोने की इच्छा होती है, उदास हो जाते हैं, हम भी ढूंढते हैं भाई क्या हुआ, पता नहीं चलता है, लेकिन उदास रहते हैं। तो बाबा ने उसके लिए भी कहा है पूर्व जन्म के हिसाब किताब, अज्ञानता में किए हुए कर्म हमको बांध के रखते हैं। और उसके लिए बहुत सिंपल रास्ता है, एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ। एक पंछी था डेजर्ट में, गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी लग रही थी, यहां तक कि वो इतना फ्रजाइल था कि उसके फेदर्स भी नहीं थे, मतलब उसके पंख भी नहीं थे जो उसको सपोर्ट कर सके, तो जैसे ही वो रेत अड़ती थी इतना गर्म लगता था उसको, एक छोटा पौधा भी नहीं था, ना पानी था एक बूंद पीने के लिए, इतनी तकलीफों वाला वो लाइफ जी रहा था और बहुत परेशान था। तो उसमें उसका ध्यान जाता, एक फरिश्ता उड़ता उड़ता जा रहा था, जोर जोर से आवाज देता है कि अरे फरिश्ते आप कहाँ जा रहे हो, कहते मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, कहते मेरा एक काम करोगे, तो कि हाँ करूंगा, कहते भगवान को जाकर के पूछना कि मेरी लाइफ बहुत मेहनत वाली है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत तकलीफें हैं, कब तक रहेगी ये तकलीफें, कहते ठीक है मैं पूछ के आऊंगा। जाता है भगवान के पास, कहता है सारा, भगवान सारी स्टोरी सुन करके कहते हैं कि 7 साल तक तो ऐसा ही है इसका। बेचारा फरिश्ता भी उदास हो गया, कहते क्या मुंह दिखाऊंगा उसको, ऐसा बोलूंगा कि ये तकलीफें 7 ईयर्स चलनी है, वो तो बेचारा वही मर जाएगा। तो कहता है मैं उसके पास जाता ही नहीं, हुआ ना छिप छिपा करके, कहते मैं वहां से निकल लेता हूँ। लेकिन वो तो इंतजार में था कि फरिश्ता मेरा मैसेज लेकर के आएगा, तो वो छिप करके जा रहा था। फिर वो दिखाई दिया, पंछी चिल्लाने लगा कि अरे मेरा जवाब तो देकर जाओ। तो वो फिर आता तो है, पंछी को कहता है कि बहुत मुश्किल है, 7 साल बोला है भगवान ने ऐसे ही रहना है। लेकिन एक युक्ति दी है भगवान ने, कहा है कि अगर वो हर हालत में थैंक्स करता रहेगा ना भगवान की, तो शायद कुछ हो सकता है। वो समझ गया। 7 दिन के बाद वापस वो फरिश्ता वहां से, उसको जाने का वही रास्ता था उसका, वो क्रॉस हो रहा था, तो उसने देखा कि वो पंछी था ना नाच रहा था, डांस कर रहा था। उसके पास एक छोटा सा पानी का भी स्थान बन गया था, एक छोटा सा पौधा भी खिल गया था, सब कुछ अच्छा अच्छा था। तो वो भगवान के पास जाकर कहते हैं कि भगवान आप तो कह रहे थे कि 7 ईयर्स तक इसको इतनी सारी परेशानियां हैं, मैं तो अभी उसको देख करके आया, वो तो काफी खुश है, काफी अच्छा है, और उसको पानी भी मिल गया, उसको शेडो भी मिल गया, सब कुछ अच्छा है। भगवान ने कहा कि उसने पुरुषार्थ किया। क्या किया? कि जब वो गरम गरम रेत पर गिरता था, बहुत जलन होती थी, तब भी वो दिल से कहता था कि थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। पानी नहीं मिल रहा था, भटकता था, तब भी वो भटकते भटकते भी भगवान को कह रहा था कि भगवान थैंक्स फॉर दिस टाइम आल्सो। हर हमेशा हर तकलीफ में वो एक ही रटन लगाए रहता था कि थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। और उसके कारण उसके पाप कटना शुरू हो गए, जो 7 साल चलना था भोगना वो खत्म हो गई, और 7 डेज में ही वो अच्छा हो गया। दिस इज द ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो मिला जैसा मिला उसमें थैंक्स करना सीखे, अहोभाव। ग्रेटिट्यूड इज अहोभाव। अच्छा ये तो मिला, ये तो मिला, है ना, इतना तो मिला जो अच्छा है। मेरे को जो मिला दी बेस्ट है, मेरे आजू बाजू जो लोग हैं वो दी बेस्ट है। भगवान ने खास चुन चुन कर रखे हैं आजू बाजू हमारे, क्यों? क्योंकि हमको मूर्ति बनानी है। कहते ना भगवान मूर्तिकार है, वो आकर के तो नहीं बनाएगा ऐसे ठोक ठोक करके, वो श्रीमत देता है। लेकिन ऐसे लोगों को हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द फिट करके रखा है, जो सारे मिल करके क्या कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, है ना। थैंक्स फॉर दैट। किसी ने गाली दी, थैंक्स फॉर दैट। किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, थैंक्स फॉर दैट। बाबा कहते हैं वैसे भी कच्चा आम नहीं खाना चाहिए, कच्चा फल खा लेना। अगर किसी ने अप्रिशिएट कर लिया और आप फूल गए, तो वो तो कच्चा फल खा लिया, तो आपका भविष्य का तो जमा नहीं होगा। तो वो जानबूझकर जमा करवा रहे हैं आपसे, आपको नहीं करना हो तब भी करवा रहे हैं, अप्रिशिएट ना करके। थैंक्स उसका भी, हर चीज के लिए थैंक्स करना सीखे। और लास्ट 7th, कभी भी करेक्शंस नहीं दो। करेक्शन करने वाला, बाबा ने कहा है कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। कईयों को आदत होती है ना, हमेशा करेक्ट ही करता रहेंगे दूसरों को। करना किसको है? खुद को करेक्ट करो। बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे हैं कि जो करेक्शन करता रहता है उसका कनेक्शन लूज हो जाता है बाबा से, उस कनेक्शन में रहो। ठीक है, तो ये 7 बातें हैं संतुष्ट होने के लिए। बाबा की श्रीमत को फॉलो करें, हमेशा अपने को देखें, स्वदर्शन करें, इच्छाएं एक भी ना रखें, है ना, कोई लीकेज ना हो, और हर बात में कंपेयर किसी से नहीं करनी है, थैंक्स करते रहना है, और कनेक्शन ठीक रखना है, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। और एक छोटी सी बात, टाइम हो गया है जस्ट 2 मिनट, जो दीदी ने परिचय में कहा, एक तो स्लम सेवा जो हमारे वहां चलती है, 1-2 सेवाएं ऐसी करती हूँ जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश भी हूँ। और ये बाबा से मैंने कहकर रखा था बहुत टाइम, मतलब वही चैलेंज भी थी, जिस जहां भवन हमारा निर्माण हुआ था वही कच्ची बस्ती थी, तो वहां इतनी परेशानी जाने के बाद पता चला। तो मैं बाबा को रोज अमृत वेले कंप्लेन करती थी कि बाबा कहां फंस गए हम, क्योंकि मकान लेना इजी होता है, बेचना बहुत मुश्किल होता है। अभी लेने के बाद, इतने पैसे लगने के बाद अभी बेच भी नहीं सकते, रहना ही पड़े वहां। और वहां कच्ची बस्ती के बच्चे, इतना गाली गलौज, शोर, गंदगी, इतना सब कुछ था। तो मैं रोज बाबा को कहती थी कि मेरे को नहीं पता था, आपको तो पता था, हमको पहले बता दिया होता तो हम ये लेते ही नहीं, ये प्रॉपर्टी अभी क्या करें। और बाबा से ये भी रिक्वेस्ट करती थी कि संगम युग पूरा हो उसके पहले मुझे ऐसी कोई सेवा करनी है जिससे सुकून मिले, संतोष मिले, ऐसा लगे कि हाँ करी कुछ सेवा तो मजा आए ऐसा। तो ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। फिर एक दिन हम लोग मीटिंग में बैठे थे, हमारा कोर ग्रुप, और वहीं पर बच्चे तूफान मचा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो ऐसे ही मेरे मुख से निकला कि हम दुनिया परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इनको ही सुधार लेना तो भी बहुत है, है ना। तो सबको लगा कि हाँ बात तो राइट है। तो सबने उसी मीटिंग में हमने पूरा प्लान बना दिया, और वो स्लम एरिया भगत की चाली के नाम से है, उसको दिव्य नगरी बनाने का प्लान किया। 5 वर्षीय योजना हमने शुरू करी, बहुत सारा उसमें प्रोसीजर हुआ, लेकिन वही बच्चे है ना। हम अब आज भी बाबा के घर में 100 से 150 वो कच्ची बस्ती वाले बच्चे आते हैं। 2014 में हमने स्टार्ट किया था, और जब वो आए तो हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं था कि भाई कैसे करना है इनको हैंडल, लेकिन रोज बाबा को पूछते थे बाबा क्या करें। और पहला दिन जब था उसका सुनाती हूँ, तो अमृत वेले बाबा को पूछ रही थी कि बाबा आज सब आएंगे तो क्या कराएंगे, क्योंकि भाषण तो सुनेंगे नहीं बच्चे, नर्सरी से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे बुलाए थे, और इतने तो ऐसे ही स्ट्रिक्ट वाले होते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा टच कराया कि उनको ऐसा परिवर्तन कर लो फिजिकली कि उनके माँ बाप भी नहीं पहचाने कि ये मेरा ही बच्चा है कि नहीं। ठीक है, तो क्लास में मैंने फिर अनाउंस किया अपने भाई बहनों को कि आप लोग है ना रहना, और अलग अलग ड्यूटीज दे दी। तो जब बच्चे आए तो कोई भाई बहन उसको हाथ मुंह धुलाई करवा रहे थे, कोई किसी ने बाल बनाए, माताओं ने नाखून काटे, एकदम से परफेक्ट अच्छे कर दिए, और वहीं से शुरुआत हुई। यहां तक कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ब्रश नहीं करते थे। सेंटर पर 2-3 मास तक लगातार हमने बच्चों को ब्रश भी करवाया है सेंटर पर, वरना उनको फिजिकली सुधारना, हाइजीनिक बनाना। ऊपर से आज खुशी इस बात की है कि 32 बच्चे हमारे मोस्ट टॉप वहां की उद्गम स्कूल है CBS की, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स ठेला चला रहे हैं, और वो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, और बहुत अच्छा। आज तो वो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और उनको फिर कोई गलत आदत न लगे, कुछ ऐसा वैसा नहीं खाए, तो क्योंकि पेडियाट्रिशियन का हमारा हर रविवार कैंप होता है बच्चों के लिए, तो जब बच्चों के डॉक्टर को बुलाया था तो उन्होंने कहा कि बच्चों को ज्यादातर पेट में दर्द की प्रॉब्लम है। तो हमने बोला क्यों, तो माल न्यूट्रिशन कुछ भी उठाकर खा लेते हैं बच्चे, तो वो नहीं खाए। उसके लिए हमने उनको स्माइली बैंक दी, माना पिगी बैंक जैसा उनको दिया, और उनको कहा कि आप पैसे बचाएंगे ना तो 1 मास के बाद जितने भी निकले, 20 निकले, 50 निकले, जितने भी निकले, उतना आपके पेरेंट्स भी ऐड करेंगे और हमारे तरफ से भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चों को इंसेंटिव देना पड़ता है, तभी वो खुश होते हैं कुछ करने के लिए। तो ऐसे करके बच्चे वो आते थे, जो मान लो कि 50 रुपया किसी में से निकला तो उसके पेरेंट्स भी 50 ऐड करेंगे, हम भी 50 ऐड करेंगे, 20 निकला तो 20। तो उनको हमेशा होता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे ले जाऊं, क्योंकि उसमें 2 फायदे हुए। एक तो बाहर का खाना, क्योंकि उनको जो पॉकेट मनी किसी से भी मिलता था वो यूज नहीं करते थे पैकेट्स खाने में, लेकिन वो बैंक में डालते थे, तो बचत भी होती थी, उनका बाहर का खाना भी बंद हो गया, और ऊपर से उनके जब वो बड़े होंगे तो उनके पास पैसा होगा आगे की फीस भरने के लिए, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड तक तो गवर्नमेंट फ्री पढ़ाती है, फिर ज्यादातर ड्रॉप ऑफ कर लेते थे पैसे के कारण। तो आज 65 बच्चों के पोस्ट ऑफिस में खाते भी हैं जो उसमें जमा करते हैं, और उनका ये माल न्यूट्रिशन के कारण मुझे फिर बाबा ने टच कराया कि अन्न जैसा शस्त्र कुछ नहीं है संस्कार परिवर्तन का, है ना। हम लोग भी ज्ञान बाद में समझते हैं, पहले तो अन्न में जाकर कमाल की। कई लोग होंगे ऐसे, कितने लोग ऐसे हैं जो केवल गुरुवार को भोग खाने जाते थे पहले जब शुरू किया तब, और भोग खाते 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 आज पक्के योगी बन गए, है ना। तो काफी ऐसे हमारे पास एक कुमार है, उसको पूछते ना आप कुमार कैसे बने, कहते गुलाब जामुन खाकर, है ना। वो पहले दिन जब सेंटर पर आए थे ना तो भोग होगा गुलाब जामुन का, कहते अच्छा इतना अच्छा अच्छा भोग होता है यहाँ, तो फिर वो आने लगा, आज बहुत पुराना कुमार है। तो ये है कि अन्न शुद्धि वो संस्कार परिवर्तन करता है। तो हम एवरी सैटरडे उन बच्चों को दिव्य खिचड़ी खिलाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, तो वो भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे कि ये प्रोजेक्ट चलता है, और जब हमने शुरू किया तब बस यही भावना थी कि उनको देना है, उनको जो भी तकलीफ हो तो वो करते थे, उनको जब होता था ये ब्रश नहीं करते तो टॉयलेट किट दी, कंपास बॉक्स दिया, ऐसे धीरे धीरे करते करते बाबा कहते ना पहले उनको जो चाहिए वो देना पड़े फिर वो हमारा सुनते हैं। तो आज बच्चे बहुत ही अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं, और जो मिनिस्टर्स कमिश्नर्स बुलाने पर नहीं आते थे वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के बाबा के घर में सारे आए, और यहां तक कि ये बच्चों के प्रोजेक्ट ने यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाया। वहां 10 मिनट का पेपर प्रेजेंटेशन का चांस मिला 2017 में, वहां नो पॉवर्टी उनका प्रोजेक्ट था। तो मैं 2016 में यूएस गई थी, तो उस समय हमने इसका इंग्लिश सर्विस रिपोर्ट बुक बनाया था दिव्य नगरी का, तो सेंटर्स पर जाते थे तो वही बुक हम देते थे। तो ऐसे हम क्वींस में भी गए थे जहां हमारी आदरणीय गायत्री दीदी है जो एनजीओ की तरफ से, माना ब्रह्मा कुमार इसकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो जब ये नो पॉवर्टी का प्रोजेक्ट आया तो गायत्री दीदी सोचने लगी कि संस्था में गरीबी के साथ कौन काम करता होगा, तो उनको वो बुक हाथ में लगी जो हमने रिपोर्ट बुक दी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आओ और सुना सकते हो, आप आ सकते हो। तो हमने कहा बाबा की सेवाएं क्यों नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार कैसे बाबा है ना, जो मैं तो समझती हूँ मुझे जिसमें सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, तो वो सेवा मैं हमेशा करती हूँ और लोगों को भी उससे खुशी मिलती है। और आज जो खुशराजी भवन यज्ञ से चल रहा है, जो वानप्रस्थियों का है, वहाँ आज भी 38 वानप्रस्थी रहते हैं, अभी शुरुआती है, 2-3 साल ही हुए हैं तो अभी भर रहा है, लेकिन बहुत मजा आती है उन लोगों के साथ। तो कई बार लोग हमको पूछते भी है कि आप बच्चों का भी प्रोजेक्ट करते हो, आप वानप्रस्थियों का भी करते हो, तो हम कहते दोनों सेम ही होते हैं वैसे, और दोनों से जो सुख मिलता है, उनके चेहरे पर जो खुशी मिलती है ना, वो आपको खुशी देती है। तो हम कहते कि संतुष्टता, जब हम संतोष रहते हैं, संतुष्ट करते हैं, और उनसे जो दुआएं मिलती है वो लाइफ को ऐसे उड़ाती है रॉकेट के जैसा, कि जिसमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, जस्ट सोचो और उनकी दुआएं काम करती है। तो जस्ट थोड़ा सा ये शेयरिंग था। ओम शांति। और यही आप सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सभी प्रसन्न रहो, आज से अब घड़ी से संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। ओम शांति।
बहुत 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 धन्यवाद दीदी, आपने तो हम सबकी पूरी माइंड क्लीनिंग कर दी, और ऐसा लगा कि छोटी छोटी बातों के कारण जो कई बार जैसे लगता है माइंड हैंग हो रखा है, तो वो आज क्लियर हो गया, और ऐसा लग रहा है कि अब हमारे जो पुरुषार्थ की जो गाड़ी है सच्चाई सफाई के साथ चलेगी, और हम स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, और सबको संतुष्ट करते हुए संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेकर इस भट्टी को सार्थक करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।